ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि महोर्मुहु. नमस्श्री इतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिने. आज अति पुण्य पवित्र आषाढ़ पूर्णिमा है. यही पूर्णिमा को हम लोग व्यास पूर्णिमा नामे मानते हैं. क्यों? व्यासदेव की जन्मदिन क्या था ठीक हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन व्यासदेव ने ऐसे कार्य किया, एक तरह बोल सकते हैं हिंदू धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करना, क्योंकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत रचाया. उसके अंदर सर्वशास्त्र के सार गीता है. वैसे उन्होंने ब्रह्मसूत्र रचाया, उसके अंदर सब उपनिषदों को सार उसके अंदर है. उन्होंने सारा जो वेद का चार भाग में विभक्त किया. ऐसे विभिन्न कारणों से व्यासदेव के सर्वश्रेष्ठ गुरु रूप में साधु समाज में हिंदू समाज में हमेशा श्रद्धा अर्पण करते हैं. तो सबको एक दिन ऐसे चुनना था, उस दिन सब मिलके व्यासदेव की प्रणाम करते हैं, श्रद्धा अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं. यही व्यास भी कई ऐसे नाम हम लोग मिल रहा है, कृष्ण द्वैपायन व्यास और बहुत सारा व्यास देव वैसे ही रहे. इसलिए कौन व्यास किसने किया वही हम लोग का अभी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हम लोग जिस व्यासदेव महाभारत ने रचाया, ब्रह्मसूत्र ने रचाया, वही व्यासदेव के हिंदू समाज के गुरु रूप में हम लोग मानते हैं, श्रद्धा अर्पण करते हैं. इस दिन इसलिए सारा उत्तराखंड में विशेष रूप से व्यास पूर्णिमा रूप में माना जाता है. उस दिन सब अपना अपना गुरु के श्रद्धा अर्पण करके उसके माध्यम में व्यासदेव के हम लोग श्रद्धा अर्पण करते हैं. रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर ऐसे प्रथा कैसे चालू हुआ, ऐसे कोई प्रारंभ कैसे हुआ? रामकृष्ण संघ के दसम गुरु परम पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज बहुत ही एक दूरदृष्टि थे. उन्होंने देखा बाद में, अभी तो पहले ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करने थे, उनकी संतान थे, उसके बाद ठाकुर की संतान से दीक्षा प्राप्त करने कर लिया. ऐसे बहुत ही सज्जन रहे. उसके बाद अभी ठाकुर की संतान वही परंपरा भी अभी नहीं आप बोल सकते हैं, परम पूज्य श्रीमद स्वामी आत्मस्थान जी महाराज की महासमधि के बाद अभी जो है उनका ठाकुर की शिष्य की शिष्य उनकी शिष्य अभी वही परंपरा चालू हो गया. तो इसीलिए अभी बाद में यही सब बाहर कई संप्रदाय में मेरा गुरु अपना गुरु यही सब लिखे बहुत कुछ मामला ऐसे वगैरह भी चालू हो जाता है, बहुत ही लड़ाई हो जाता है. इसलिए उन्होंने कहा रामकृष्ण संघ में जितने गुरु पहले हुए अभी भी है सब मिलके सबको हम लोग एक गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा का दिन श्रद्धार्पण करेंगे, उसके माध्यम में अपने अपने गुरु को स्मरण करेंगे, अपने अपने गुरु को श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे. इसीलिए आप देखेंगे प्राय हर रामकृष्ण मठ मिशन शाखा केंद्र में एक व्यास पूर्णिमा एक सुंदर रूप से हम लोग मानते हैं, उसका कोई पूजा वगैरह व्यवस्था भी करते हैं. इस संदर्भ में गुरु के बारे में, उस शिष्य के बारे में, परस्पर संपर्क के बारे में भी कुछ अभी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। गुरु असल रूप में गुरु कौन है? गुरु के बारे में जो बहुत ही प्रचलित प्रसिद्ध जो दो श्लोक है, कई भी है, एक दो हम आपको सुना सकते हैं। गुरु के हम लोग ऐसे ही मानना है, सोचना है, सबसे ऊंचा स्थान उनका देना है, हृदय में ऐसे ही भावना से, गुरु की सच्चाई से, गुरु की जो कृपा, गुरु के माध्यम में जो मिलना, वही समय वैसे प्रकट होगा। इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं वही गुरु की नमन करता हूँ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इतना तक नहीं है, इसके भी अधिक स्वयं परब्रह्म, वही गुरु को मैं नमन करता हूँ। तो ठाकुर में भी कहते थे, असल गुरु आप मेरे सबको अंदर जो विद्यमान सच्चिदानंद, वही असल गुरु है। ठाकुर स्वयं गुरु बाबा करता है, तीनों शब्द बहुत ही नाराज होते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कोई ऐसे उनके संबोधन करे तो, बहुत ही उनका विरक्त होता था। तो इसलिए उन्होंने तो हमेशा सबके साथ में वही व्यवहार करते थे, इतना नम्र भाव, विनम्र भाव, सबको प्रति ऐसे आदर दिखाना सबके प्रति। तो ठाकुर भी साधारण अवस्था में कभी अपना को गुरु नहीं समझते थे। तो उन्होंने भी खुद कहा, असल गुरु है हम सबको अंदर जो सच्चिदानंद है, वही असल गुरु है। और गुरु शब्द कैसे आया? गुरु शब्द के मूल है गु अंधेरा, रु माने रुद्ध करना, जो आपसे अंधेरा रुद्ध करते हैं, हटाते हैं, वही सच्चाई से गुरु है। वही भी इस श्लोक में वही अर्थ भी प्रकट हो रहा है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो हम सब आँख अज्ञान अंधेरा से ढके हुए, ज्ञानांजन लगा के हम सबको ज्ञान चक्षु खोल देते हैं गुरु, वही सच्चाई से गुरु है। पैसे गुरु कैसे पता करें, कैसे प्राप्त करें? बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गुरु के बारे में जितना कहा गया उसके भी अधिक कहा गया शिष्य के बारे में। जैसे हम लोग ऐसे उचित शिष्य नहीं बन पा रहे हैं, तब तक वैसे भी हम लोग भी सच्चिदानंद गुरु ढूंढना, एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, ब्रह्मज्ञ पुरुष गुरु ढूंढना तो संभव नहीं है। तो क्या यही अवस्था में क्या करना है, कैसे होगा, किस प्रकार, कितने प्रकार गुरु है, गुरु के साथ कैसे हम लोग संपर्क बनाए, क्या हो सकता है? तो साधारण रूप में हम सब जैसे देख पाते हैं धरती में बहुत तरीका गुरु के साथ हम लोग संपर्क हो पाता है। हम सब अपना अपना अवस्था की व्यवस्था के अनुसार हम लोग चुन लेते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है वही ठीक निर्णय लेने में वैसे गुरु व वैसे गुरु परंपरा के साथ हम लोग संपर्क जरूर जुड़ जाएगा। क्योंकि पहला अवस्था में, कच्चा अवस्था में, जैसे हम लोग पहले साधन में प्रवेश करते हैं, इतनी हम सबको अज्ञान है, इतने पूर्व पूर्व जन्म की कर्म बंधन है, ऐसी इसी अवस्था में जाके कोई आपके सामने, मेरे सामने गुरु उपस्थित भी हो जाए, आ जाए, फिर भी समझना असंभव होगा हम लोग का, क्योंकि वैसे आंख ही नहीं, हम लोग कैसे समझ पाए। इसीलिए साधारण जैसे हम लोग धरती पे कितनी प्रकार गुरु देखते हैं, इसके बारे में जितने कम बोले उतने अच्छा है। लेकिन सच्चाई से जो साधक है, जो साधन करना चाहते हैं, जीवन के उद्देश्य के बारे में धारण स्पष्ट है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन इतना तक मेरे अंदाज है, मेरा कहाँ जाना है, मैं क्यों आया हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे मैं जीवन जीऊं, इस बारे में थोड़ा भी स्पष्ट अंदाज हो जाए, स्पष्ट हम लोग पता कर लें, लेकिन उसके बारे में ऐसे कोई परंपरा के साथ जोड़ना, ऐसे कोई आदर्श के साथ जोड़ना जीवन में सबसे आप देखेंगे आप सुरक्षित होंगे। नहीं तो इधर उधर भटके हम कहाँ चले जाएं, किसके गुरु में पास जाके कहाँ फंस जाएं, मुश्किल है। इसीलिए तो ये रामकृष्ण विवेकानंद परंपरा में क्या है, जितने लोग दीक्षा देते हैं सब बिल्कुल जानते हैं वो कुछ नहीं है, स्वयं रामकृष्ण देव ही आप इष्ट हैं, वही आपके गुरु है, लेकिन किसी किसी को वैसे माध्यम उन्होंने बनाया, उसकी बार उसके लिए आपका थोड़ा कहाँ आप थोड़ा देख पाते हैं, आपका मार्ग कहाँ, इतना तक आप आपको बता देते हैं, इतनी उनके कर्तव्य है उतने ही वो करेंगे, बाकी सब जैसे जैसे आप साधन करेंगे श्री रामकृष्ण देव सच्चिदानंद रूप में आपके अंदर से प्रकट होके धीरे धीरे आपके रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इतना तक नहीं, श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा तो तीन डाकू के बारे में उन्होंने बताया, तो किसी ने कोई ऐसे कोई व्यक्ति के उन्होंने वो तीन डाकू पकड़ाया, पहले लोग बोला उसके काट दो, उसके रखना मुश्किल है, तो बाद में किसी को बताएगा, वो है बहुत ही तामसिक डाकू, इसे फिर जो ने बोला है उसके बांध दो लेकिन उसका ऐसे ही छोड़ दो, वो बोले ठाकुर वो राजसिक है। वो तीसरा जो सत्वगुण जिसके अंदर है वो बाद में सब बंधन खोल देता है, थोड़ा ले भी जाता है, बोलता है देखो मैं इतना तक पहुंचा दिया तुमका, वहां तुम्हारा घर है, तो पूछा अरे तो इतना दूर आया, मैं कह ले चलो, नहीं नहीं मैं वो इतना दूर तक मैं नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आप चलो। तो वही ठाकुर कहते हैं आपके गुरु भी साधारण रूप से आपके उतना दूर तक तो ले पाएंगे, अंत में आपके स्वयं साधन के माध्यम में जैसे जैसे आप साधन करेंगे यन साधन तन सिद्धि, तब आप सिद्ध हो पाएंगे, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही रामकृष्ण परंपरा में घराना में यही है, कोई अपना के गुरु नहीं समझते, ठाकुर भी स्वयं कभी किसी को ऐसा बोला नहीं मैं तुम्हारी गुरु है, लेकिन जब उनका अवस्था बदल जाता था, जब वो भावमुख में वैसे ही छड़ जाते थे उच्च अवस्था में, उस समय बहुत कुछ वो शिक्षा देते थे, दीक्षा भी देते थे, मंत्र भी देते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन जब स्वाभाविक अवस्था में वापस आते थे बिल्कुल इतनी सरल सहज विनम्र व्यक्ति आप सोच भी नहीं पाते। तो श्री रामकृष्ण ऑल्सो हैड दिस टू एस्पेक्ट्स, वेन यू वॉज इन दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी मूड, वेन यू वॉज इन दैट हायर ट्रांसेंडेंट स्टेट, he used to guide, he used to give spiritual instructions, he used to even initiate, he used to give mantra, he used to do everything, he would tell your past, present, future, where are you stuck, where should you go, sab bata pate the, lekin jab swabhavik avastha mein jaise wapas aate the bilkul dusri tarah, maitri se bhi vinamra ho, usse bhi niche ho, aise aise batate aap, मैं भक्तों के पद रेणु की रेणु, ऐसे अपना को समझा देते थे, अपना के बारे में विवरण करते थे। तो मदर वॉज ऑल्सो लाइक दैट, माँ किसी ने लड़का को ऐसी युवक को किसी को दीक्षा दिया, दीक्षा देखी तुरंत बताया देखो बेटा अभी तुम तो मंत्र लिया लेकिन समझ लो मैं तुम्हारी माँ हूं, ठाकुर स्वयं तुम्हारी गुरु है, तो बहुत ही यही हो गए, विचलित हो गए, अरे क्या है अभी तुमने मेरी दीक्षा दिया, तुम तो मेरा गुरु है ऐसे क्यों बोल रही हो, नहीं नहीं मैं तुम्हारी माँ हूं, दो तीन बार माँ ने बताया, जब उन्होंने फिर जबरदस्ती करने लगा माँ बताया अरे अच्छे से देखो अच्छे से देख, तो उन्होंने अचानक देख रहे हैं माँ की जगह पे अपना स्वयं गर्भधारिणी माँ बैठी हुई, तो मूर्छा होके गिर पड़े, जब माँ उनको पीठ पे हाथ लगाया, धीरे धीरे अरे उठो उठो क्या हुआ करके फिर देख करके स्वयं माँ बैठी हुई। तो जब साधारण रूप से समझ नहीं पाते थे, माँ आध्यात्मिक तरह किसी दर्शन देके किसी वक्त समझा देती थी। सो माँ हमेशा ही सोचती थी मैं तो आप सबको माँ हूँ। सो ऑल्दोस शी यूज्ड टू इनिशिएट, सबको कितनी लोग के मंत्र दिया, कितनी मार्गदर्शन किया, लेकिन माँ भी स्वयं जानती थी वो सिर्फ श्राम रूप एक जो भगवान की एक धरती पे आने की एक रूप लिए, वही रूप के द्वारा अनुप्रेरित अनुप्राणित उत्साहित ऐसे कोई माध्यम है, उसके माध्यम में किसी किसी कोई साधकों का कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है। सो इसीलिए आपके साधारण रूप से हम सब वैसे वैसे गुरु हम लोग देखते हैं कि ठाकुर ने भी कहा साधारण वैसे गुरु मंत्र देते हैं कान में, तो साधारण ऐसे भी कई जगह पे ऐसे कोई प्रचल है, ऐसे कोई व्यवस्था है, साधारण गुरु कान में मंत्र देते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं जगत गुरु प्राण में मंत्र देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे उत्साहित करते हैं, उसी के आपके अंदर एक नव जागरण हो जाएगा। तो इसी परंपरा में हम लोग देखते हैं गुरु कितनी प्रकार, तो साधारण जैसे वैसे गुरु हम लोग देखते हैं वो तो एक गुरु है, और कोई कोई ऐसी अच्छी परंपरा में आके गुरु बने हुए, लेकिन वो खुद समझते हैं मैं सच्चाई से गुरु नहीं हूं, मैं थोड़ा सहायक हूं, मार्गदर्शन करने वाला हूं। इससे भी उच्च स्तर पर आप जाएं, कोई शास्त्र में इसके बारे में कहा गया आधिकारिक पुरुष, ऐसे कोई अधिकार लेके जन्म लिया, उनकी वैसे दीक्षा देने का, ऐसा कोई देने का, ऐसा कोई करने का कुछ अधिकार है, और बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति है। तो ठाकुर भी वैसी कई बार कहते थे ऐसे गुरु होना विडंबना है, बिल्कुल होना नहीं है। साधारण रूप से आपका कोई भगवान से कोई आदेश ऐसे कोई आपकी यही नहीं मिला, फिर भी आप गुरु होकर बैठ गए, ऐसे गुरु नहीं हो सकता है। इससे चापरास से मैंडेट, भगवान से ऐसे कोई आपका आदेश मिला ऐसा करने के लिए, गुरु होने के लिए, तब ठीक है, नहीं तो ऐसे पद पे मत जाओ, गुरु होना विडंबना है, ठीक नहीं कहते थे। तो ये आधिकारिक पुरुषों का वैसे कोई जन्म से ऐसे कोई अधिकार प्राप्त करके शक्ति लेके जन्म लेते हैं, उसके माध्यम में उनका विभिन्न प्रकार ऐसे कोई मार्गदर्शन करने का अधिकार है, करते भी है। अब इससे भी थोड़ा उच्च अवस्था के बारे में आप सोचें, थोड़ा ऊंचाई में जाए, वहां हम लोग देख पाते हैं ये अवतार पुरुष, जिन्होंने क्योंकि आधिकारिक पुरुषों को भगवान कोई शक्ति बा कोई संदेश ऐसे कोई आदेश देके भेजते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं धरती की अवस्था वैसे है, इतना अधर्म की बड़ा, तो इसका क्या करें, धर्म कैसे संतुलन फिर ले आओ, कैसे धर्म संस्थापन कैसे संभव है, क्या करना है। तो जब कोई मानते नहीं है स्वयं आ जाते हैं मनुष्य रूप धारण करके, इसके हम लोग अवतार कहते हैं। वैसे अवतार अवतार वो भी गुरु बनते हैं, लेकिन उनका शिक्षा दूसरी प्रकार होता है। ऐसे नहीं वो घर घर जाके व्यक्ति व्यक्ति के पास जाके उनका मंत्र देना, उन्होंने किसी वक्त जैसे इन्हें बताया ऐसे ही उनका आध्यात्मिक शक्ति पुंज एक शक्ति समूह है उनके अंदर, उसकी वजह से उन्होंने सारा जगत की जगा सकते हैं। तो महापुरुष महाराज पूज्य स्वामी शिवानंद जी भी हमेशा कहते थे श्याम देव के ये जगत के इन्होंने आया ब्रह्म कुंड ने, जगत की ब्रह्म कुंड ने जागृत करके उन्होंने आई। हम लोग जानते हैं हम सब व्यक्तिगत रूप में सबको अंदर जो योग की जो मार्ग में कहा जाता है, हम सबको अंदर एक कुंडली एक शक्ति वैसी है, तो उसकी जगाने में आपका आध्यात्मिक जागरण हो जाता है, वो भी एक मार्ग है। एक कुंडलीकृत जो आध्यात्मिक शक्ति की जागरण करने के लिए सच्चाई से वैसे गुरु के प्रयोजन है, ये भी कहते हैं। लेकिन आप सब व्यक्तिगत रूप में आप जितनी आप कल्पना करें, वैसे भी समग्र जगत लेके एक विश्व भी लेके आप ऐसे भी आप सोच सकते हैं, उसके अंदर एक जगत की, इसके लिए ब्रह्म कुंडली कहते हैं। आप व्यक्तिगत रूप में सबको अपना अलग अलग जागरण करना एक तो है, लेकिन सारा जगत का आपका जागरण करना, क्योंकि आपके अलग अलग ऐसे कितने लोग आप कर पाते हैं, 5-10 हजार, 2 हजार, 10 हजार, 5 हजार, 1 लाख हो सकता है, लेकिन आप सारा जगत में कितने हैं, सारा जगत को ऐसे कुछ कल्याण करने वाले, ऐसे कोई विशेष भगवान की कोई रूप, भगवान के अवतार जो अवतरित होकर धरती पे जब आते हैं, उन्होंने इतना आध्यात्मिक शक्ति लेके आते हैं, उसके माध्यम में सारे जगत के कुछ जागरण करना संभव है। इसे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु मैंने आया सारा जगत के प्रेम की रास्ता पे, प्रेम के माध्यम में भगवान के प्रति कैसे प्यार हो सकता है, उसकी मार्ग में उन्होंने सारा जगत के विषय जगाया। अभी भी कितने लोग चैतन्य महाप्रभु द्वारा उत्साहित होके ऐसे कोई प्राप्त करके ऐसे ऐसे मार्ग उन लोग में वो मानेंगे, वही मार्ग में चलना प्रयास करते हैं। सो द पावर दैट केम एस चैतन्य महाप्रभु केम विद दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर, द पावर टू अवेकन पीपल इन द पाथ ऑफ भक्ति, भक्ति पथ पे सबको जगाने के, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्यार, वही रास्ता में सबको जगाने के लिए जो आए थे, उनकी शक्ति अभी भी विद्यमान है, अभी भी बहुत साधकों वही मार्ग में चलना कोशिश करते। वैसे आप शंकराचार्य की देखें, वो ज्ञान मार्ग में जिन्होंने प्रतिष्ठा किया, ज्ञान मार्ग में बहुत हजारों हजारों लाखों लोगों करोड़ों करोड़ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वही पद पे जगाने के लिए वो आए थे। वैसे आप श्रीरामकृष्ण देव के बारे में भी आप देखेंगे, उनका जीवन में भी बहुत विशेषता है, ऐसे उन्होंने भी जगाया, सबको जगाया। अभी भी कितने लोग सारा पृथ्वी पे, भारत में, बाहर में, कहाँ कहाँ आप जाएं, रशिया में, अमेरिका में, जापान में, कितनी देश पे आप जाके, हर जगह पे किसी ना किसी अल्प विस्तृत संख्या में कितनी लोग उन्होंने आध्यात्मिक दिशा में जगाया। लेकिन जैसे से महापुरुष जी ने कहा ब्रह्म कुंडली की जागृत करके उन्होंने आए, उस रामकृष्ण जो परंपरा में यही आपके घराना में आने में विशेषता क्या है, एक विशेष रूप में उन्होंने समन्वय भाव लेके आए थे। इसीलिए आप देखेंगे उनके भक्तों के अंदर, कुछ शिष्यों के अंदर भी आप देखेंगे, जो ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित आपको मिलेगा, भक्ति मार्ग में प्रतिष्ठित मिलेगा, योग मार्ग में प्रतिष्ठित मिलेगा, कर्म के द्वारा जो कुछ आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना चाहते हैं उनके भी आपके बहुत संख्या में मिलेगा। सो आप देखेंगे श्रीरामकृष्णदेव जैसे उन्होंने एक आध्यात्मिक शक्ति का जागरण किया, आप जिस पथ पे जाना चाहते हैं आप वही पथ पे आप जा पाएंगे। लेकिन उन्होंने यही विशेषता था, उन्होंने इतनी बता देते, आप जीवन के बारे में सोचो, जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचो, मैं क्यों आया, क्या करना है, कैसे जाओ, क्या करो। लेकिन आपके जिस पथ पे जाने में आपकी सुविधा है, वे कई बार उन्होंने खुद बताते यही तुम्हारे नहीं है। सिर्फ उन्हें देखो, कई शिष्य उनके पास आते थे, उसके अंदर भी ज्ञान मार्ग की जितनी पुस्तकों था सप्ताह वो हमेशा नरेंद्र ला के देते, नरेंद्र तो नहीं चाहते थे, वो तो ब्रह्म समाज करते थे, उसके तो अंदर ऐसे तो नहीं था, उनका तो निराकार, लेकिन सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे, निर्गुण निराकार उपासना तो नहीं मानते थे उन लोग, लेकिन ठाकुर जानते थे सर्वश्रेष्ठ निर्गुण निराकार उपासना के अधिकारी है नरेंद्र, इसलिए उनको वैसी वैसी किताब देते थे, नरेंद्र तो लेने के भी तैयार नहीं रहते थे, नहीं मेरे अकेले लेना, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, पढ़ के मेरे सुना। करते करते धीरे 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 बाद में हम सबको पता चला कैसे अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गए, कैसे उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त किया, एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण स्वरूप हम लोग पाते हैं नरेंद्रनाथ को। ऐसे उन्होंने ब्रह्मानंद प्रेमानंद वगैरह सबको जैसे जैसे मार्ग उचित था वही मार्ग में सबको मार्ग प्रदर्शन करते थे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए आगे चलने के लिए सहायता करते थे। तो इसलिए श्रीनाथदेव भी कहते थे दो तरीका व्यक्तियां मेरे पास आते थे, तो साधारण रूप जिन लोग आते थे वो सिर्फ मांगते थे मेरा मुक्ति चाहिए, मेरा मुक्ति चाहिए, मैं जीवन में मुक्त होना चाहता था। ठाकुर कहते थे वो तो साधारण साधक है, उसके तो जरूर मार्गदर्शन मिलता था, लेकिन उन्होंने विशेष रूप में कहते थे जिन लोग मेरे अंतरंग है, मेरा बहुत नजदीक है, वो तीन चीज हमेशा ध्यान रखते थे, मैं कौन हूं, वो कौन है, हम दोनों के बीच में क्या संपर्क है, ये तीन चीज लोग हमेशा ध्यान रखते थे, वो बताते थे। तो आप देखेंगे इसके अंदर पहले तो खुद के बारे में सोचना, मैं कौन हूं, क्यों आया, क्या करना है, मेरा जीवन की उद्देश्य क्या है, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। दूसरा है तो ठाकुर के बारे में आप जितनी उच्च धारण आप कर सकें, जितने आप सोच सकें, वैसे आपका जीवन में फायदा है। जो वही लोग सिर्फ ऐसी कोई मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानतः ये तीनों चीज में बहुत ध्यान देते हैं, मैं कौन हूं, ठाकुर कौन है, ठाकुर कौन है उसके बारे में जितनी समझना, जितनी प्रयास करना, जितनी गहरा इतनी जाना, जैसे जैसे जाते हैं देखते हैं बहुत कुछ फिर जानना है, बहुत कुछ पता करना है। इतना बड़ा इतना गहरा समुद्र है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, जितने आप प्रयास करें उतने आप गहराई में जा पाएंगे। इसे तो करते करते ऐसे हो जाते हैं, ठाकुर के भाव में विभोर हो जाते हैं, भावस्थ हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में संपर्क के बारे में जितने सोचेंगे धीरे धीरे स्पष्ट मन में एक धारण आ जाएगा, मेरा कोई सोचना नहीं है, ठाकुर मेरा सब कर देंगे, जहां जाना, जिस पथ में जाना, जो मार्ग में देना, मेरा जितनी दिक्कतियां हैं सब ठाकुर समझ लेंगे, संभाल लेंगे, मेरा सिर्फ उनके पकड़ के रहना, उनके चरणों में शरण लेना, यही मेरा कर्तव्य है। ये तीन चीज जिन लोग इतनी गहराई से सोचेंगे वो जानते हैं ठाकुर के पकड़ने में सब जीवन में आ जाएगा। कल के हम लोग एक जगह में कुछ चर्चा करते थे, वो वहां लिखा है कथा वचनामृत में, केशव चंद कैसे दुर्गा पूजा के समय दूसरी तरीका माँ दुर्गा की उन्होंने व्याख्यान कैसे किया, कोई बता रहे थे, मास्टर महर्षि बता रहे थे, केशव ने बोला आप माँ दुर्गा की पूजो तो साक्षिता लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश सब आ जाएगा। वैसे आप ठाकुर के वैसे ठाकुर कौन है, ठाकुर कौन है, ठाकुर के साथ मेरा संपर्क क्या है, यही सोचते 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 आपके जीवन ऐसे सुधार हो जाएगा, ऐसे मिश्रण हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आप देखेंगे आपका जीवन में आध्यात्मिक जीवन में जाने का रास्ता बहुत साफ हो जाएगा, और हजार विपत्तियां हजार सब दिक्कतियां से ठाकुर स्वयं आपके पुनः पुनः उद्धार करते रहते हैं। इतना तक नहीं है, आप ठाकुर के बारे में जैसे जैसे सोचेंगे आप धीरे धीरे देखेंगे आपके जीवन में माँ कैसे कैसे आपकी स्थान ले ली। आप तो ठाकुर की तरह ही बहुत गहराई से जा रहे थे, लेकिन जैसे आप ठाकुर के साथ ऐसे संपर्क बनाएंगे, ठाकुर के बारे में आप सोचते रहेंगे गहराई से, ठाकुर कौन है, ठाकुर कौन है, सच्चाई से आपके तुरंत माँ के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर के जीवन में माँ छोड़ के क्या ठाकुर के जीवन ही असंपूर्ण रहेगा, क्योंकि ठाकुर कई बार कहा वो मेरी शक्ति है, वो ज्ञानदायिनी है, सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए धरती पे आए हुए हैं। तो आप ठाकुर तो तीनों चीज क्यों कहा, आप सोचिए जैसे ठाकुर के बारे में आप जितनी गहराई से आप जाएंगे आपके धीरे धीरे आप देखेंगे वहां माँ भी आ जाती है, माँ आपका जीवन में आ जाए। माँ तो सिर्फ योगक्षेमम वहाम्यम जैसे गीता में कहा गया, आपके सिर्फ आध्यात्मिक जीवन नहीं है, आपके संसारिक जीवन में भी बहुत कुछ माँ देख लेंगे, क्योंकि माँ भी स्वयं वैसी थी ना, बहुत माँ तो कभी ऐसे संसार के बिल्कुल छोड़ के उसकी प्रति नाराज होके उसका अनादर करके उसके दिशा में नहीं दिखा के नहीं रही। हमेशा संसार में हर जिसके प्रति ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी, सब देखती थी। तो वैसे भी आप ठाकुर के बारे में सोचते सोचते आपके जीवन में मां थोड़ा भी स्थान ले लें, आप देखेंगे ठाकुर की चाप तो पास जाके आपके सब कुछ मांगना, सब कुछ बोलना, सब कुछ दिक्कतियां बताने भी बहुत मुश्किल है, क्यों ठाकुर सुनेंगे नहीं। आप थोड़ा भी इधर उधर जाएं ठाकुर तो नाराज हो जाए, नहीं तो समाधि से हो जाएंगे, आप बिल्कुल बातें नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप मां के साथ ठाकुर के जीवन में प्रवेश करते करते ठाकुर के बारे में जैसे ही आप गहराई से सोचने लगेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे माँ के बारे में आपके सोचना पड़ रहा है, माँ भी आपका जीवन में स्थान ले लिए। तो धीरे 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 आप देखेंगे माँ के जीवन के बारे में जैसे आप सोचेंगे, आप देखेंगे आपके सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में एक संतुलन, आप देखेंगे एक बैलेंस एक तरह आपका जीवन में आ जाएगा। क्यों? माँ तो हर दिशा हर हमेशा हर दिख माँ नजर रखती है। तो माँ हमेशा आपका सिखाएंगे बताएंगे किस पथ में जाना, कितनी दूर जाना, आपकी अपना दायित्व कितनी दूर तक पालना, क्या क्या करना। हमेशा आपकी कोई समस्या है ठाकुर के बारे में ना जा पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, माँ के पास जाके बताइए, माँ तुरंत हम सबको मार्गदर्शन करेंगे, इस सबके बारे में अच्छे से समझाएंगे। धीरे धीरे हम लोग वही सांसारिक जीवन में भी आप देखेंगे बहुत कुछ सुधार हो रहा है, आपका चलने का कुछ रास्ता मिल रहा है, क्योंकि माँ के जीवन में अब तो जरूर आप सब पढ़े होंगे कितनी कितनी तरीके लोग आया, ऐसे भी आया बहुत बार आया, कितनी बार दर्शन किया, लेकिन एक बार माँ के बारे पास आके माँ मेरा दीक्षा दे दो मेरा मंत्र दे दो, ये भी बोल भी नहीं पाए। बाद में शरद महाराज से दीक्षा ली, लेकिन फिर भी क्या माँ की उसके प्रति कृपा कम रहा? ऐसा तो नहीं है। इसलिए माँ जितने लोग पास में आते थे सबको अपना अपनाना, आपके पास किसके रखना लेना गले में लगाना हर तरीका, कितने आप तो कितनी घटनाएं ऐसी ऐसी महिला ऐसी ऐसी व्यक्तियां आ देते, मैं तो आपका सान्निध्य में आने भी लायक नहीं हूं, मेरा ऐसे ही से जीवन है। बोला बिल्कुल भूल जा, ठाकुर के चरणों में सब समर्पण करो, आज से तुम्हारी नया जीवन है, मैं आज ही तुम्हारी दीक्षा दे दूं। फिर भी दीक्षा देना क्या है? ठाकुर के पास चलने का एक मार्गदर्शन करना, ठाकुर ही तुम्हारा स्वयं गुरु है, ठाकुर ही तुम्हारा इष्ट है, यही समझाना। इसलिए हम देखेंगे ठाकुर जो तीन चीज कहे मेरे पास मेरे बारे में बहुत वो जानना समझना और दोनों के बीच में संपर्क, तो आप देखेंगे ऐसे करते करते माँ की जगह इतना तक नहीं है, माँ के इतने ठाकुर के इतना प्रिय शिष्य थे नरेंद्र नाथ, विवेकानंद की छोड़ के नरेंद्र नाथ की छोड़ के तो ठाकुर का जीवन हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे हम लोग ठाकुर के बारे में ऐसे गहराई से सोचने लगेंगे, ठाकुर कौन थे, उनका क्या हुआ, क्यों आए, मेरे साथ ठाकुर की क्या संपर्क है, करते करते आप देखेंगे स्वामी जी भी आपके जीवन में आ गए। क्यों? स्वामी जी के बिना तो ठाकुर के बारे में सोच नहीं पाएंगे। जैसे स्वामी जी आ गए आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत कुछ नया मार्ग चलने का। क्यों? आपके अंदर मेरे अंदर सबको इतना एक ऊर्जा है, एनर्जी है, काम करने के लिए शक्ति है, मन की चंचलता है, ये सब कैसे मैं संभालूं, क्या करूं, दिखाया दर्शाया चलो यही दस पे लोकहित में सेवा में दूसरों के लिए सोचने में, जो दूसरे के लिए रहेंगे वही सच्चाई से जीवित है, बाकी सब मरे हुए ऐसे व्यक्ति का समान है, ऐसे उन्होंने कहा। इसीलिए आप ठाकुर के बारे में सोचते सोचते माँ फिर तुरंत स्वामी जी, उसके बाद बाकी सब शिष्यगण और बाकी सब धीरे धीरे जितने उनके आदर्श गृहस्त थे सब आपके सामने आ जाए, सबको जीवन में आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे प्राप्त करते 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 आप देखेंगे आपके जीवन भरपूर हो गया, परिपूर्ण हो गया, भरा हो गया ऐसे ऐसे चीजों में। आप कैसे भी आप जीवन देखेंगे इतने करते करते को जा थक जाते हैं। अच्छा यही लीला सोचो, इसके बारे में सोचो, इतनी ठाकुर के नजदीक इतने भक्त लोग थे, एक एक के बारे में सोचते सोचते तो आप देखेंगे कितने दिन आपका चला जाएगा, बहुत कुछ होता रहेगा। मान लीजिए नाग महोदय, योगिन माँ, गोलाप माँ, सारदेश्वरी, कितने कितने लोग सबके लिए। तो आपका देख रहे हैं आपके जीवन एक वर्णमय जीवन, ऐसे योग ऐसे एक वैचित्रपूर्ण जीवन है। इसमें ठाकुर यही पसंद कर देते हैं, ऐसे कोई शुष्क ज्ञानी कभी मत करना, मैं तो रस लेते रहना चाहता हूँ, रस में डूब रहना चाहता हूँ। तो आपको जीवन में देखेंगे कितनी तरह आपका विभिन्न प्रकार एक आध्यात्मिक दिशा में चलने के लिए, देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए बहुत कुछ आपका मिलता रहता है, मिलते रहता है। यही ठाकुर के बारे में गहराई से सोचने का यही आपका फल है। आप देखिए ठाकुर आगे, माँ आगे, स्वामी जी आगे, सब कुछ आगे, ऐसे 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 करते रहते हैं। आप देखेंगे आपका जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं रहेगा वो निराश है, निरुत्साह है, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा हो सकता है, करते करते आप तुरंत देखेंगे कहाँ किस जिस दिशा में आप देखेंगे उस दिशा में कुछ ना कुछ आपका नया नया हमेशा मिलता रहता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कमिंग इन टू रामकृष्ण विवेकानंद शारदा घराना, इसके माध्यम में आपका जीवन में आध्यात्मिक दिशा में चलते चलते ऐसे नहीं है, ऐसे इसे आप ठाकुर भी देखते हैं यही मुहूर्त में समाधि से है, तुरंत उतर के बताते हैं, अरे मेरा जिले भी ले आओ, कौन ले आया, मैं अभी लेना चाहता हूँ, किसके साथ बांटना नहीं चाहता, मैं खिला ले लूं, कितने कितने बच्चे की तरह। सो आपका जीवन में देखेंगे एक आध्यात्मिक जीवन में ये रामकृष्ण विवेकानंद घराना में आना, यही घराना के आपके गुरु रूप में स्वीकार करना, स्वयं ठाकुर के इष्ट एवं गुरु रूप में मानना, इसके क्या है आपके साधन चलेगा, साधन की चाह आपका इतना आपका जीवन में रस अनुभव करेंगे, आप ऐसे आनंद अनुभव करेंगे, आपका जीवन में देखेंगे किसी से आपका किसी कम नहीं है। तो इसलिए तो लेकिन ठाकुर इतनी एक अंत में ही उन्होंने एक ही शर्त उन्होंने लगाया था, बोला देखो आपका जीवन में एकमात्र आपके जीवन के उद्देश्य है भगवान लाभ करना, भगवान लाभ करने के लिए आप आए हुए, यही आप ध्यान रखो, याद रखो हमेशा भगवान के प्रति। ऐसे ही तुम्हारे मन में व्याकुलता, ऐसे कोई भगवान के लिए पुकारने के लिए मन है, ऐसा तुम्हारा जीवन हो जाए, आप देखेंगे धीरे 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 सब कुछ आपकी तरह आ जाएगा। कल के इसे भी हम लोग बात किए थे, संसार में कितनी तरह दिक्कतियां हैं, कितनी तरह विपत्ति है, कितनी लोग कितनी नाराज है, क्या कहते हैं, कितना दिक्कत है। ठाकुर कहते हैं पहले तो उन्होंने बहुत कुछ कठिनाई कुछ कहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मास्टर मिल के समझाया, देखो सच्चाई से आपके भगवान के प्रति ऐसे मन है, उनको बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। आप देखोगे धीरे धीरे आपके परिवार, आपके सब पड़ोस वाले, आपके परिसर, सब कुछ आपका पक्ष में आ जाएगा, कोई दुष्ट लोग भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। क्यों? धीरे धीरे आपके ऐसे भगवान के प्रति मन होने का ऐसी एक क्षमता है, ऐसी शक्ति है। इसके साथ आप जोड़ दीजिए भगवान के, हम लोग स्वयं श्री रामदेव के ऐसे गुरु रूप में, इष्ट रूप से आप मानेंगे, आप जैसे उन्होंने वो तीन चीज बताया, ठाकुर के बारे में हमेशा सोचना, ठाकुर होने मैं कौन हूँ, हम दोनों के बीच में क्या संपर्क है, इसके बारे में सोचते सोचते से आप जैसे जैसे गहराई से जाएंगे, आप भगवान के प्रति जो कीच वो व्याकुलता वही रख रख के आप चलना कोशिश करें, देखेंगे आपके जीवन में जैसे जैसे जरूरत है पुनः पुनः आता रहेगा आता रहेगा। आपका अलग से ऐसे कोई किसी के बारे में सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना इतने एक बहुत बड़ा अरण्य के अंदर के प्रवेश करना की तुलना है। क्यों? इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, किसी वक्त बहुत बहुत जन्म जन्म की कृपा से ऐसे कोई अज्ञात में जीवन की तरह थोड़ा हम लोग के लगन है, थोड़ा उसकी तरह चलने का मन में इच्छा है, उतना तक ही है। हम लोग तो प्रवर्तक भी कहना मुश्किल है, वही सर पे हम लोग अभी हैं, वही अवस्था से क्या करें। इसीलिए ऐसे किसी को आपके मार्गदर्शन के लिए गुरु रूप में माना, इष्ट रूप में माना, ऐसे कोई परंपरा में, ऐसे कोई संप्रदाय में आना, निश्चित रूप से विश्वास रख के चलना, इसके फल क्या है? आप धीरे धीरे धीरे, नहीं तो ऐसे कोई महाअरण्य ने आप प्रवेश किया, ऐसे कोई जगह पे आया जिसके बारे में समुद्र की गहराई में आप डूब देने के लिए जा रहे हैं, आप तो इतना तैरना भी इतना नहीं जानते हैं, आप कैसे उद्धार होंगे, कैसे बचेंगे? ठाकुर की कृपा से, क्योंकि उसके साथ महास्वामी जी सब आपकी सहायता करेंगे, इस सब में दिशा में आप संपूर्ण रूप में, ऐसी आपका जीवन एकल मंगलमय सुखमय हो जाएगा। साधन करने में आपका धीरे धीरे इच्छा मन में बढ़ेगा, यही पहला चाहिए। अभी हम लोग साधन करने ही बहुत दिक्कत लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग जबरदस्ती बैठते हैं, हाँ दीक्षा लिया आया है, करने में पुण्य है, साधन करना है, नहीं तो पाप है, ऐसे ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप ऐसे ऐसे आप परंपरा में आप लगन होके विश्वास रख के आप करते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे पहला चीज आपका मन में जरूर इतना तक आप प्राप्त करें, साधन करने का आनंद। साधन करने में अंत में क्या पाना, क्या मिलना, वो तो दूरी बात है, पहले साधन करने में इतनी इच्छा, इतने मन में एक संतोष, एक आनंद, साधन करने में साधन आनंद मन में आ जाए, आप देखेंगे धीरे धीरे आप ठीक पथ पर आए हुए हैं। इसे आगे आगे धीरे धीरे चलना ठाकुर मां स्वामी जी की कृपा से, उन्होंने खुद हम सबको हाथ पकड़ के आगे ले चले। आज एक विशेष एक गुरु पूर्णिमा दिन में ठाकुर मां स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना हम सब मिलकर निवेदन करेंगे, उन सबको कृपा से हम सब ठीक ठीक मार्ग समझ पाए, जीवन में आध्यात्मिक जीवन में रुचि बने, साधन करने में बहुत प्रबल इच्छा हम सब मन में जागृत हो जाए, यही प्रार्थना करके मेरा वाणी की विराम देता हूँ। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।